देखिए भाई आगे सबक। फल मोरबुल लदी हुआ किस्म मीन अल इसमी अल मुरक्कब अयिल इस्म लदी रुकी बा गैरिही तरकीब यतहक्ककु माहु आमिलुहु फयदखुलु फीहि ज़ैदुन व क़ाइमुन व हाउलाई फी क़ौलिका ज़ैदुन क़ाइमुन व क़ाम हाउलाई بخلاف ما ليس بمركب اصلا من الاسماء المعدوده نحو الف با تا زيد عمر بكر وبخلاف ما هو مركب مع غيره لكن لا تركيبا يتحقق معه عامله كغلام في غلام زيد فان جميع ذلك من قبيل المبنيات عند المصنف رحمه الله। अच्छा, गुज़श्ता सबक में हम इसम के खासे पढ़ रहे थे भाई। मुसन्निफ ने कुल इसम के पांच खासे जिक्र किए और मैंने आपको बतलाया था कि इनमें से हर खासा जो है उसके जिमन में कई खासे आ गए भाई। तो गुज़श्ता सबक में आखिरी दो खासे अल इस्नादु इलैही वल इज़ाफ़तु हमने पढ़ा था भाई, और शारह जामी ने आपको बतलाया था कि वल इस्नादु इलैही इस पर रफा पढ़ना और इसका अतफ दुखूल पर करना, और वो तो मरफू है तो इसको भी मरफू पढ़ना भाई, तो इसका अतफ उस दुखूल के मदखूल यानी लाम पर न करना, क्योंकि लाम तो मजरूर है मुजाफिले है, तो फिर इस पर भी क्या पढ़ना पड़ेगा जर, और हालांकि इस पर जर पड़ेंगे तो बात दुरुस्त नहीं रहती, इसलिए क्योंकि दुखूल का जो माना जहन में आता है वो ये कि एक चीज लफ्ज के शुरू में दाखिल हो या लफ्ज के आखिर में दाखिल हो भाई, जबकि इस्नाद और इजाफत दोनों मानवी चीजें हैं, ये एक लफ्ज के शुरू या आखिर में नहीं आती बल्कि दो लफ्जों के दरमियान जो जोड़ है और रबत है अगर वो निस्बते तामा हो तो उसको इस्नाद कहते हैं, और अगर निस्बते तामा ना हो वैसे एक चीज की निस्बत दूसरी चीज की तरफ की गई है तो उसको इजाफत कहते हैं। तो इजाफत भी मानवी चीज, दो चीजों के दरमियान रबत और जोड़ का नाम है, और इस्नाद भी एक मानवी चीज, दो लफ्जों के दरमियान जोड़ और रबत का नाम है, तो ये लफ्ज के शुरू में या आखिर में दाखिल नहीं होते भाई। तो अगर लाम पर आतफ करते फिर तो माना होता कि इस्नाद का दाखिल होना और इजाफत का दाखिल होना लफ्ज के शुरू या आखिर में, हालांकि ये माना सही नहीं बनता क्योंकि ये लफ्ज के शुरू या आखिर में दाखिल नहीं होते भाई। और फिर इन्होंने ये भी बतलाया था कि इस्नाद से मुराद है एक शय का मुस्नदिलह होना, एक शय का मुस्नदिलह होना, ये तर्जमा नहीं किया कि इसम का मुस्नदिलह होना, इसलिए क्योंकि इसम का मुस्नदिलह होना वो तो इसम ही के साथ खास है, जाहिर सी बात है। मेरे पास मसलन तीन लफ्ज हैं भाई, एक है इसम, एक है फेल, एक है हर्फ। मैं इसम की तरफ इस्नाद करता हूं तो जब मैंने ये इस्नाद की ही इसम की तरफ है तो ये तो खास भी इसम ही के साथ होगी, ये इस्नाद तो फेल या हर्फ में नहीं हो सकती। वल इस्नादु इलैही अगर उसका तर्जमा यह कर दिया जाता कि इसम का मुस्नदिलह होना, इसम का मुस्नद इसम का मुस्नदिलह होना ये इसम का खासा है भाई। इसम का मुस्नदिलह होना वो तो इसम ही के साथ खास होगा ना, इसम का मुस्नदिलह होना तो फेल में या हर्फ में नहीं हो सकता भाई। ये ऐसे ही है जैसे आप कहें जैद की सखावत जैद के साथ खास है भाई, जब जैद की सखावत है तो जाहिर सी बात है वो जैद के साथ ही खास होगी ना, वो तो अमर और बकर में नहीं पाई जाएगी। अमर और बकर में तो उनकी अपनी सखावत हो सकती है, जैद की सखावत नहीं हो सकती। वल इस्नादु इलैही का तर्जमा ये ना करना कि इसम का मुस्नदिलह होना, बल्कि क्या तर्जमा करो, एक शय का मुस्नदिलह होना, शय आम है, जो भी शय हो जब वो मुस्नदिलह बन जाए तो समझ जाओ ये इसम है। बात समझ में आ गई, जो भी शय क्या बन जाए, जो भी लफ्ज आपको इबारत में नजर आए कि वो मुस्नदिलह बन रहा है, साथ ही समझ जाना एक दूसरी बात भी कि ये क्या है, इसम है। बात समझ में आ गई। फिर सवाल पैदा हुआ कि फेल क्यों मुस्नदिलह नहीं बन सकता, तो शारह जामी ने आपको बतलाया कि फेल को वजह ही इसलिए किया गया है कि इसका इस्नाद किसी चीज की तरफ किया जाए कि वो हमेशा यानी मुस्नद बने, तो उसको वजह ही मुस्नद बनने के लिए किया गया है। तो अगर उसको मुस्नद इलैह बनाएंगे ये तो उसकी वजह के खिलाफ लाजिम आएगा भाई, तो वजह के खिलाफ लाजिम आएगा और ये दुरुस्त नहीं। और इसी तरह बतलाया कि इजाफत जो है ये भी इसम का खासा है। भाई इजाफत तो दो चीजों के दरमियान निस्बत का नाम है, पहले को कहते हैं मुजाफ, दूसरे को कहते हैं मुजाफोन इले। तो इजाफत तो एक मानवी चीज है, इससे क्या मुराद है? मुजाफ होना इसम का खासा है या मुजाफिले होना इसम का खासा है या दोनों इसम के खासे हैं? मुजाफ होना भी इसम का खासा और मुजाफिले होना भी इसम का खासा। तो कहते हैं इससे मुराद है मुजाफ होना, एक शय का मुजाफ होना यह इसम का खासा है, और यह मुजाफ भी तकदीर हर्फ जर के साथ हो। एक शय का मुजाफ होना यह इसम का खासा है, मुजाफिले होना नहीं, क्योंकि मुजाफिले फेल या जुमला भी बनते हैं, फेल या जुमला भी बनते हैं। जैसे मिसाल भी जिक्र कर दी, यौम यनफाउ सादिकीन सिदकुहुम, तो इसमें यौम की इजाफत यनफाउ की तरफ हो रही है। और फिर इसमें उलामा का इख्तिलाफ, बाज फरमाते हैं कि यौम की इजाफत सिर्फ लफ्ज यनफाउ यानी फेल की तरफ इजाफत हो रही है, और बाज फरमाते हैं कि नहीं, फेल अपने फाइल वगैरह और मुतालिकात से मिलेगा और जुमला बनेगा और जुमले की तरफ यह यौम की इजाफत हो रही है। तो इसमें उलामा के दो ग्रोह हैं, तो बाज क्या फरमाते हैं यह इजाफत किसकी तरफ है? फेल की तरफ। बाज क्या फरमाते हैं यह इजाफत है जुमले की तरफ। तो बहरहाल चाहे फेल की तरफ इजाफत मानो चाहे जुमले की तरफ इजाफत मानो, तो दोनों सूरतों में मुजाफिले गैर इसम है। एक कौल के मुताबिक मुजाफिले फेल है, दूसरे कौल के मुताबिक मुजाफिले जुमला है। तो मालूम हुआ मुजाफिले होना इसम का खासा नहीं है, वो तो फेल भी बन सकता है और जुमला भी बन सकता है मुजाफिले। मालूम हुआ सिर्फ मुजाफ होना किसका खासा है? इसम का खासा है। और नीज ये भी बतलाया इन्होंने आपको कि मुजाफ होना बितकदीर हर्फिल जर्री, हर्फ जर की तकदीर के साथ, यानी हर्फ जर वहां मुकद्दर होना चाहिए, लफ्जों में नहीं होना चाहिए। भाई ये कैद आपने क्यों लगाई? कहते हैं इसलिए क्योंकि फेल की भी इजाफत और निस्बत कर दी जाती है इसम की तरफ। मरर तू बी जैदिन, इसमें मरर तू फेल की निस्बत हो रही है किसकी तरफ? जैद की तरफ। किसके जरिए? बवास्ता हर्फ जर। मरर तू बी जैदिन, मरर तू की निस्बत इस बा के जरिए किसकी तरफ हो रही है? जैद की तरफ हो रही है। तो यहां हर्फ जर तकदीरन है या लफ्जों में है? लफ्जों में है, मौजूद है। तो लफ्जों में जब हर्फ जर मौजूद हो फिर तो फेल की भी इजाफत हो जाती है, फेल भी मुजाफ बन जाता है। इसीलिए क्या कहा कि वह हर्फ जर तकदीरन होना चाहिए, तब मुजाफ होना इसम के साथ खास है। अगर हर्फ जर लफ्जों में हो तो फिर तो फेल भी मुजाफ बनता है, उसकी भी इजाफत यानी निस्बत की जाती है हर्फ जर के जरिए। इन्होंने आपको क्या बतलाया? मुजाफ होना इसम का खासा है, मुजाफिले होना इसम का खासा नहीं। लेकिन कहते हैं बाज उलमा फरमाते हैं कि जब इसम की इजाफत जो है वो फेल या जुमले की तरफ हो तो वो मस्दर की तावील में होता है। वो फेल या जुमला किस तावील में होता है? मस्दर की तावील में होता है। जैसे यौमु यनफउ सादिकीन सिदकुहुम, ये किस तावील में है? यौमु नफउ सादिकीन। देखो यनफउ को मस्दर की तावील में कर लिया, और मस्दर तो इसम है, मस्दर तो मुजाफ होना खासा है इसम का। जब भी कोई इसम मुजाफ होगा किसकी तरफ? फेल या जुमले की तरफ, तो फेल या जुमला किस तावील में होगा? मस्दर की तावील में होगा, और मस्दर भी क्या होता है? इसम होता है। फिर तो मुजाफिले होना भी इसम का खासा हो गया। मुजाफ होना तो हमने बता दिया किसका खासा है? इसम का खासा है। मुजाफिले होना इसम का खासा नहीं था, मुजाफिले तो फेल भी बनता है और जुमला भी। लेकिन बास क्या फरमाते हैं कि जब फेल या जुमला क्या बने? मुजाफिले, तो वो किस तावील में होता है? मस्दर की तावील में, और मस्दर भी क्या है? इसम है। मुजाफ तो था इसम, मुजाफिले भी इसम ही होता है हर जगह पर। मालूम हुआ मुजाफ होना भी इसम का खासा और मुजाफिले होना भी इसम का खासा है। बात समझ में आ गई? हमने क्या तर्जमा किया था इजाफत का? मुजाफ होना, मुजाफ होना, क्योंकि इजाफत दो चीजों की सिफत बन रही थी, मुजाफ की भी और मुजाफिले की भी। मुजाफ की इजाफत की जाती है और मुजाफिले की तरफ इजाफत की जाती है, और हमने इजाफत का क्या तर्जमा किया था? मुजाफ होना। लेकिन अगर यह कौल ले लिया जाए फिर तो मुजाफिले होना भी किसका खासा है? इसम का। तो फिर यूं कहेंगे कि इजाफत वो इजाफत जो हर्फ जर की तकदीर के साथ हो, वो इजाफत मुतलकन इसम का खासा है। वो इजाफत जो भी तकदीर हरफिल जर के साथ हो वो मुतलकन इसम का खासा है। मुतलकन क्या माना, यानी चाहे मुजाफ हो चाहे मुजाफिल हो, दोनों में से जो भी हो। बात समझ में आ गई? तो अब मुजाफ होने के साथ इसका तर्जमा करने की जरूरत नहीं। हासिल कलाम क्या कि अगर यह कौल ले लिया जाए तो इजाफत जो है मुतलकन जब वो किसके साथ हो, हरफे जर की तकदीर के साथ हो, तो वो इसम का खासा है। जो मुजाफ हो वो भी इसम होगा और जो मुजाफिल हो वो भी इसम होगा। यह माना था, यह जो गुजश्ता सबक में आखिर में आया था, फल इजाफतु बि तकदीर हरफिल जर मुतलकन यख्तसु बिल इस्मी, बस वो इजाफत जो तकदीर हरफ जर के साथ हो वो मुतलकन खास है किसके साथ, इसम के साथ, अगर यह वाला कौल ले लिया जाए भाई। उसके बाद इन्होंने आपको बतलाया था कि ये जो इसम जो है ये दो किस्म पर है, मुअरब है और मबनी है भाई। और मुअरब और मबनी से पहले किस्मानी का लफ्ज़ शारह जामी ने जिक्र किया था। मैंने बतलाया था कि यही बेआईन ही यही एतराज जो शुरू में कलिमा की तारीफ के बाद कलिमा की तकसीम की थी, वही यस्मू व फेलू व हर्फुन, कि कलिमा जो है इसम और फेल और हर्फ होता है। तो वहां पर भी वो इसम फेल और हर्फ के दरमियान क्या आया था, वाओ, और वाओ जमईयत का फायदा यानी जमा होने का फायदा देता है। तो इसका मतलब है ये तीनों चीजें जमा होंगी तो उसको कलिमा कहेंगे। मालूम हुआ एक ही चीज इसम भी हो, वही चीज फेल भी हो, वही चीज हर्फ भी हो, अब इसको कहेंगे ये कलिमा है। क्योंकि क्या कहा, वही अस्मू व फेलू व हर्फुन, इसम फेल और हर्फ के दरमियान क्या लाए, वाओ, और वाओ क्या तकाजा करता है कि इनको क्या होना चाहिए, जमा, और ये सारा मजमुआ फिर बनेगा खबर किसके लिए, कलिमा के लिए। तो अलकलिमा तू कलिमा वो चीज है कि इसम फेल और हर्फ तीनों इकट्ठे हों एक ही लफ्ज में, एक ही लफ्ज इसम भी हो फेल भी हो हर्फ भी हो, उसको क्या कहेंगे, कलिमा कहेंगे। हालांकि ये तो दुरुस्त नहीं है, इसम फेल और हर्फ तो एक दूसरे की कसीम है, एक दूसरे के मुकाबिल हैं, जमा हो ही नहीं सकते। एक लफ्ज जब इसम होगा तो वो फेल और हर्फ नहीं हो सकता, और एक लफ्ज जब फेल होगा तो वो इसम और हर्फ नहीं हो सकता, और एक लफ्ज जब हर्फ होगा तो वो इसम और फेल नहीं हो सकता। ये कभी इकट्ठे होते ही नहीं है, फिर तो इसका मतलब है कलिमा का वजूद ही कोई नहीं। तो उसका जवाब दिया था कि भाई दरअसल यहां दो चीजें हैं, एक है हमल और एक है अतफ। हमल होता है एक चीज का दूसरी चीज पर हुक्म लगाना, जैदुन कायमुन, जैदुन है महकुमुन अलै, और इस पर कायमुन का हुक्म लगाया गया है, इसी हुक्म लगाने को हमल भी कहते हैं। जैदुन कायमुन, मैंने जैद पर क्या हुक्म लगाया, कयाम का, कयाम का, तो यूं कहेंगे कि मैंने कायमुन का हमल किया है जैद पर, या यूं कहेंगे मैंने कयाम का हमल किया है किस पर, जैद पर। तो ये जो हुक्म लगाया जाता है, ये जो निस्बत की जाती है, इसको हमल कहते हैं। और एक है आतफ के जिसमें हुरूफ आतफ से पहले जो आए उसको कहते हैं मातूफुन आले, और बाद वाले को मातूफ कहते हैं भाई, मातूफ कहते हैं। तो दो चीजें हैं यहां, एक है हमल और एक है आतफ। तो जब एक चीज की तकसीम हो रही हो अज्जा की तरफ तो फिर आतफ मुकदम होता है, और जब एक चीज की तकसीम हो रही हो जुजियात की तरफ यानी अफराद की तरफ यानी अकसाम की तरफ, अफराद जुजियात अकसाम एक ही चीज है, चाहे मैं अफराद कह दूं चाहे मैं जुजियात कह दूं चाहे मैं अकसाम कह दूं, तो जुजियात और अफराद बिल्कुल एक चीज। मसलन आप इंसान के अफराद हैं, आप में से हर एक इंसान, और यूं भी कह सकते हैं आप इंसान की जुजियात हैं, आप इंसान की जुजियात हैं। तो जब एक शय की तकसीम हो अज्जा की तरफ तो फिर अतफ मुकदम होता है। मसलन मैं कहता हूं चाय जो है वो दूध चीनी पत्ती और पानी का नाम है, चाय दूध चीनी पत्ती और पानी का नाम है, यानी ये चारों चीजें चाय के अज्जा हैं, ये मिलेंगे तो चाय बनेगी, ये चाय के अफराद नहीं है, अफराद नहीं है बल्कि अज्जा हैं, ये चारों मिलेंगे तो फिर चाय बनेगी। तो इस जब ये अज्जा की तरफ एक चीज की तकसीम हो तो पहले अतफ करते हैं इनका एक दूसरे पर, इन सारों को मिला देते हैं, और फिर हमल करते हैं मुब्तदा यानी चाय पर, फिर हमल करेंगे, ये सारी चीजें मिलेंगी तो फिर ही इनको हम कहेंगे ये चाय है। या दूसरी मिसाल जैसे मैंने अरबी में जुमला लिखवाया था, असिकंजबीन खलुन व असलुन व माउन, सिकंजबीन किसका नाम है, सिरका शहद और पानी, इन तीन चीजों को मिलाएंगे। अब ये सिकंजबीन के अज्जा हैं, लिहाजा यहां हमल पहले नहीं करेंगे। हमल करो जरा एक का, सिकंजबीन खल्लोन सिरका है, ये बात सही है नहीं? सिकंजबीन शहद है, ये बात सही है? ये भी नहीं सही। सिकंजबीन पानी है, ये भी नहीं सही। तो यहां पहले आतफ करेंगे, इन तीनों को एक दूसरे पर आतफ करके जोड़ देंगे कि ये तीनों मिल गए। अब इसका हमल किस पर कर देंगे? सिकंजबीन पर, कि ये सारे मिले तो क्या कहलाए? सिकंजबीन। तो जब एक शय की तकसीम हो किसकी तरफ? अज्जा की तरफ, तो आतफ मुकदम और हमल मुअख्खर। और जब एक शय की तकसीम जो है अफराद की तरफ हो तो फिर हमल मुकदम होता है। लिहाजा कलीमा किसका नाम है? इसम और फेल और हर्फ, तो हमल मुकदम है। यूं कहेंगे कि कलीमा इसम है और कलीमा फेल है और कलीमा हर्फ है। अब आतफ से, अब हमल सही हो गया, एक एक का हमल अलग अलग हो रहा है। तो मैंने बतलाया था कि ये जो साहिब जामी हैं, साहिब जामी, इन्होंने मुअरबों व मबनियों से पहले किस्मानी का लफ्ज निकाला। इसमें दो तकरीरें हो सकती हैं, या तो वो बतलाना ये चाहते हैं कि ये जो आगे मुअरब और मबनी आ रहे हैं ये इसम की किस्में हैं, अज्जा नहीं है। गोया ये तकसीम इलल अफराद है, तकसीम इलल अज्जा नहीं। और जब तकसीम इलल अफराद हो तो हमल मुकदम होता है किस पर? आतफ पर। वरना तो बजाहिर ये लगता था वह हुआ मुअरब व मबनी, इसम मुअरब और मबनी होता है, मालूम हुआ वह दरमियान में वह आया जमा के लिए, मालूम हुआ एक ही चीज मुअरब और मबनी होगी। हालांकि एक ही चीज मुअरब और मबनी नहीं होती, ये दोनों एक दूसरे के मुकाबिल हैं। जो मुअरब है वह मबनी नहीं और जो मबनी है वह मुअरब नहीं है। बात अच्छी तरह समझ में आ गई। तो यहां पर भी उन्होंने किस्मानी लफ्ज निकालकर क्या बतला दिया कि ये दोनों किस्में हैं। जब ये दोनों किस्में हैं तो किस्मों के अंदर क्या मुकदम होता है? हमल मुकदम होता है आतफ पर। या ये कहना चाहते हैं साहिब जामी के मौरबों व मबनियों इसको खबर बनाओ ही ना, इसकी खबर महुआ की खबर महजूफ है, ऐ किस्मानी, ये है खबर, वह हुआ किस्मानी। इसम दो किस्म पर है और आगे मुअरबों व मबनियों उसको इसी किस्मानी से या तो बदल बना दो, और बदल और मुबदल मिन्हू का इराब एक होता है। किस्मानी मरफू था, खबर थी, तो ये भी मरफू हैं कि बदल हैं उससे। या दूसरी सूरत ये है कि इनके लिए मुबतदा महजूफ निकाल लो, और चाहे तो दोनों के लिए एक ही मुबतदा महजूफ निकाल लो कि हुमा मुअरबों व मबनियों, वो किस्में मुअरब और मबनी है इसम की। या दोनों के लिए अलग अलग मुबतदा महजूफ निकाल लो, अहदुहुमा मुअरबुन, तो मुअरबुन के लिए अहदुहुमा मुबतदा महजूफ निकाल लो, वसानीहिमा मबनीयुन, मबनी के लिए सानीहिमा अलग मुबतदा महजूफ निकाल लो और इनको खबर बना दो। उसके बाद फिर हमने मतन हल किया था। साहिब काफिया ने मुअरब की तारीफ की थी और कहा था फल मुअरबुल मुरक्कबुल लदी लम युशबिह मबनीयल असली, मुअरब वो मुरक्कब है जो मबनीयुल असल के मुशाबे न हो। मुअरब वो मुरक्कब है, मुअरब की तारीफ कर रहे हैं, मुअरब किसे कहते हैं? वो मुरक्कब जो मबनीयुल असल के मुशाबे न हो, यानी वो इसम जिसको गैर के साथ जोड़ा गया हो। और मैंने बतलाया था ऐसी तरकीब मुराद है जिसमें उसका आमिल भी मौजूद हो। तो मुअरब वो इसम है जिसको गैर के साथ जोड़ा गया हो ऐसी तरकीब के साथ जिसमें उसका आमिल भी मौजूद हो और नीज वो मबनीयुल असल के मुशाबे भी न हो। ये दो शर्तें हैं मुअरब में। पहली शर्त क्या? कि वो तरकीब में हो, और तरकीब भी कैसी हो? जिसमें उसका आमिल हो। और दूसरी शर्त क्या? कि मबनी उल असल के मुशाबे ना हो। और मबनी उल असल कितनी चीजें हैं? तीन, फेले माजी, फेले अमर और तमाम हरूफ बई, तो इनके मुशाबे ना हो। और मैंने बतलाया था हर मुशाबेहत भी नहीं मुराद, कुछ खास मुशाबेहतें मुराद हैं जो आगे मबनियात की बहस में आएंगी। दुआ करो अल्लाह ताला इस सारी किताब को इसी साल तम्मत तक पहुंचाने की तौफीक नसीब फरमाए और वक्त में खूब अल्लाह ताला बरकत नसीब फरमाए भाई। तो वहां आ जाएगा खास मुनासिबतें मुराद हैं। जैसे एक मुनासिबत मैंने जिक्र कर दी थी, एक मुनासिबत, और वो क्या? कि ये इसमें इशारा और असमाए मौसूला ये भी मबनी है। मबनी उल असल देखो तीन चीजें, फिल माजी, अमर और तमाम हरूफ, इनमें से इसम एक भी नहीं है। हां, इसम के अंदर आठ किस्मों को हमने मबनी करार दिया है, उसको इसमें गैर मुतमक्किन कहते हैं, और ये मुआरब को कहते हैं इसमें मुतमक्किन, और जो मबनी होता है उसको क्या कहते हैं इसमें गैर मुतमक्किन, और वो आठ किस्में हैं और उनमें से एक भी मबनी उल असल नहीं है। फिर उनको मबनी क्यों करार दिया? भाई उनकी दरअसल इस मबनी उल असल के साथ मुशाबहत होती है, तो इस वजह से उनको मबनी करार दिया है। और खास मुशाबहतें मुराद हैं भाई, उनमें से एक मुशाबहत मैं जिक्र कर रहा हूं, मसलन इसमें इशारा और इसमें मौसूल, ये दोनों हर्फ के मुशाबे हैं, और हर्फ तो मबनी उल असल है, तो ये भी क्या बन गए? मबनी उल असल। भाई ये किस तरह हर्फ के मुशाबे हैं? कहते हैं जैसे देखो हर्फ अपना माना बयान करने में और कलिमों के जुड़ने का मोहताज है, जैसे हर्फ गैर का मोहताज है अपना माना अदा करने में, इसी तरह इसमें इशारा भी मोहताज है मुशारुन इलै का, इसमें इशारा भी मोहताज है मुशारुन इलै का। तो देखो हाजा इसमें इशारा, इसके जरिए तो किसी भी मुफरद मुजक्कर चीज की तरफ इशारा किया जा सकता है। तो अगर मैं बगैर इशारे के सिर्फ कहूं हाजा, आपको कुछ पता चला क्या मुराद है? नहीं, क्योंकि हाजा इसके जरिए तो किताब की तरफ भी इशारा हो सकता है, इसके जरिए तो कलम की तरफ भी इशारा हो सकता है, इसके जरिए तो कागज की तरफ भी इशारा हो सकता है, इसके जरिए तो और किसी भी चीज की तरफ इशारा हो सकता है। तो इसमें इशारे का माना पता ही नहीं चलेगा जब तक इसके साथ मुशारुन इलै नहीं आएगा, और मुशारुन इलै कभी लफ्जों में आता है और कभी उसकी तरफ इशारा हिस्सिया होता है या कोई करीना बतलाता है। तो बहरहाल मुशारुन इलै का पता चलना चाहिए, चाहे कोई करीना बतला दे, चाहे हाथ वगैरह से इशारा कर दे, चाहे लफ्ज जिक्र कर दे, किसी ना किसी तरह मुशारुन इलै का पता चलना चाहिए। मसलन मैं हाथ से इशारा करता हूं किताब की तरफ, हाजा, अब आप समझ गए कि हाजा से क्या मुराद है? किताब, या इशारा हिस्सिया है भाई, इशारा है हिस्सिया, नजर आ रहा है आपको किस चीज की तरफ इशारा किया गया है। और कभी हाजल किताब जी मुशारुन इलै क्या? किताब, वो लफ्जों के अंदर उसके साथ जिक्र हो गई। और कभी कोई करीना होता है वो बतला देता है, तो कोई ना कोई चीज ऐसी हो जो बतला दे के मुशारुन इलै क्या, तो मालूम हो इसमें इशारा किसका मोहताज? मुशारुन इलै का, उसके बगैर इसका माना समझ में नहीं आएगा। तो यह हर्फ के मुशाबे हुआ, तो यह भी क्या बन गया? मबनी बन गया। इसी तरह इसमें मौसूल जो है उसका माना पूरा समझ में नहीं आता जब तक उसके साथ उस सिला ना जोड़ा जाए, तो वो सिले का मोहताज हुआ, तो वो भी हर्फ की तरह हुआ जो अपने माना बताने में गैर का मोहताज होता है। तो इसलिए इसमें इशारा भी मबनी है और इसमें मौसूल भी मबनी है। उसके बाद साहिब जामी ने वजह हसर जिक्र की थी कि ये दो किस्में क्यों हैं भाई इसम की, मौरब और मबनी। तो बतलाया था कि इसम के अंदर दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो वो गैर के साथ तरकीब में वाक़े होगा या तरकीब में वाक़े नहीं होगा, और फिर जब तरकीब में वाक़े हो तो फिर वो मबनी उल असल के मुशाबे होगा या मुशाबे नहीं होगा। जब जब इसम तरकीब में भी हो और मबनी उल असल के मुशाबे भी ना हो तो फिर वो मौरब कहलाएगा, बाकी सूरतों में वो मबनी कहलाएगा। वो तरकीब में ही वाक़े ना हो सिरे से तो भी वो मबनी है, जैसे जैद अकेला लफ्ज, ये क्या है? साहिब काफिया के नजदीक मबनी है भाई। जैद पर आप रफा पढ़ना चाहते हैं, भाई रफा तो खुद नहीं आता, उसके लिए तो हामिल चाहिए, यहां तो कोई हामिल नहीं है, तो न रफा पढ़ सकते हैं न नसब न जर, जैद ये क्या है? ये मबनी है साहिब काफिया के नजदीक। और इसी तरह गुलाम जैदीन, गुलाम को मैंने जैद के साथ जोड़ दिया, और अब गुलाम पर आप रफा पढ़ना चाहते हैं, नहीं भाई रफा नसब जर तीनों के लिए आमिल चाहिए, यहां कोई आमिल नहीं। हां जैदीन जो मुजाफिले है उस पर जर पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुजाफिले को मुजाफ जर देता है। तो गुलाम भी तरकीब में है, जैद भी तरकीब में है, लेकिन गुलाम के साथ उसका आमिल नहीं है, जबकि जैद के साथ उसका आमिल है जो उसको जर दे रहा है। और नीज ये दोनों मबनी उल असल के मुशाबे नहीं है, गुलाम भी मबनी उल असल के मुशाबे नहीं। आम इबारतों में आता है गुलाम का लफ्ज, तो आप उस पर रफा नसब और जर वगैरह पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? जैद भी आम इबारतों में आता है, आप उस पर रफा नसब जर पढ़ते हैं, मालूम हुआ ये दोनों मबनी उल असल के मुशाबे नहीं। वो शर्त तो पूरी है और तरकीब में भी वाक़े हैं, लेकिन तरकीब के अंदर एक का आमिल है एक का आमिल नहीं। और हमने क्या कहा था? तरकीब ऐसी होनी चाहिए जिसमें उसका आमिल हो। लिहाजा गुलाम जैदीन, इसमें गुलाम का लफ्ज़ साहिब काफिया की तारीफ के मुताबिक मबनी है, क्योंकि ये ऐसी तरकीब में है जिसमें इसका आमिल साथ नहीं। जबकि زید کا لفظ جو ہے صاحب کافیہ کے نزدیک معرب ہے کیونکہ یہ ترکیب میں بھی واقع ہے، ایسی ترکیب جس میں اس کا عامل بھی ہے اور نیز یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ معرب ہے۔ اب دیکھیے آگے بھائی کہتے ہیں فالمعرب الذي هو قسم من الاسم المركب اي الاسم الذي ركب مع غيره تركيبا يتحقق معه عامله۔ بھائی متن کیا ہے؟ فالمعرب المركب الذي لم يشبه مبني الاصل، نظر ہے متن پر، فالمعرب المركب الذي لم يشبه مبني الاصل، صاحب جامی نے معرب کے بعد لفظ نکالا فالمعرب الذي هو قسم من الاسم، کہ معرب وہ والا مراد ہے جو اسم کی قسم ہے، مطلق معرب مراد نہیں ہے۔ بھائی بھائی یہ کیوں، یہ صاحب جامی کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اشکال یہ ہوتا ہے، اشکال یہ ہوتا ہے، سنیے بھائی، آپ کی معرب کی یہ تعریف فعل مضارع کو شامل نہیں، حالانکہ فعل مضارع بھی معرب ہے، آپ جانتے ہیں بھائی، یضرب دیکھو رفع ہے، لن یضرب دیکھو نصب آیا، اور لم یضرب دیکھو جزم آیا، تو فعل مضارع بھی کیا ہے؟ معرب ہے، اس کا آخر بھی بدلتا ہے بھائی آپ عامل کے بدلنے سے، تو وہ بھی معرب ہے، لیکن آپ کی یہ تعریف فعل مضارع کو شامل نہیں، تو آپ کی یہ تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں، کیونکہ یہ تعریف فعل مضارع پر صادق نہیں آتی۔ فعل مضارع میں یاد رکھو بھائی دو مذہب ہیں بھائی، ایک ہے بصرہ والوں کا مذہب، علماء نحو ہیں جو بصرہ کے، اور دوسرے کوفہ کے نحوی۔ بصرہ کے نحوی کہتے ہیں کہ فعل مضارع بھی اصل میں مبنی تھا بھائی، ہر فعل اصل کے اعتبار سے مبنی ہوتا ہے، تو فعل مضارع بھی کیا تھا؟ فعل ہے، اور فعل اصل کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ مبنی، تو فعل مضارع بھی مبنی تھا اصل میں، لیکن پھر اس کی مشابہت آ گئی اس میں فاعل کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اسی لیے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں، مضارع کا معنی ہے مشابہ، یہ کس کے مشابہ ہے؟ اس میں فاعل کے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فعل مضارع کی بحث آپ نے پڑھی ہوگی ہدایت النحو میں بھی کافیہ میں بھی، تو وہاں تفصیل بیان ہوتی ہے کہ فعل مضارع کو فعل مضارع کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس میں فاعل کے مشابہ ہے، لفظوں میں بھی اس کے مشابہ، معنی میں بھی اس کے مشابہ، لفظوں میں اس طرح مشابہ کہ جتنے حروف فعل مضارع کے ہوتے ہیں اتنے ہی حروف اس میں فاعل کے بھی ہوتے ہیں، یضربو کتنے حروف؟ چار، ضاربن اسی سے اس میں فاعل کتنے حروف؟ چار، اچھا یکرمو کتنے حروف؟ چار، یکرمو چار حروف، اور مکرمن اس کے بھی کتنے حروف؟ چار، یستخرجو کتنے حروف؟ یستخرجو کتنے حروف؟ چھ، اور مستخرجن اس کے بھی کتنے حروف؟ چھ، تو حروف بھی برابر ہوتے ہیں، نیز حرکات و سکنات بھی برابر ہوتی ہیں، فعل مضارع کے اندر جس حرف پر حرکت آئے گی اس میں فاعل میں بھی وہاں جو حرف آ رہا ہوگا وہاں پر حرکت آئے گی، یعنی یوں کہو کہ فعل مضارع اور اس میں فاعل، ساکن کے مقابلے میں ساکن آئے گا اور متحرک کے مقابلے میں متحرک آئے گا، یستخرجو یستخرجو دوسرا حرف بھی ساکن اور چوتھا بھی ساکن، توجہ ہے، یستخرجو سین بھی ساکن اور خا بھی ساکن، دوسرا حرف بھی ساکن اور چوتھا بھی ساکن، مستخرجو اس میں فاعل لے آؤ، اس میں بھی دیکھو دوسرا حرف بھی ساکن اور چوتھا بھی ساکن، یا ضریبو جی کون سا ساکن؟ دوسرا، زاربن کون سا ساکن؟ دوسرا، تو حرکات و سکنات میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، حروف کی تعداد میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، نیز جیسے فعل مضارع پر تاکید والا لام داخل ہوتا ہے لازربن، دیکھا لام تاکید آ گیا، اسی طرح اس میں فاعل پر بھی لام تاکید داخل ہوتا ہے، ان زیدن لضاربن، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو دیکھو لفظوں میں بھی مشابہت ہے اور معنی میں بھی مشابہت ہے، جیسے فعل مضارع حال اور استقبال کے لیے آتا ہے اسی طرح اس میں فاعل بھی حال اور استقبال کے لیے آتا ہے، تو لفظوں میں بھی مشابہت اور معنی میں بھی مشابہت، تو فعل مضارع اصل میں کیا تھا؟ مبنی، پھر اس میں فاعل کے ساتھ مشابہت آئی تو کیا بن گیا؟ معرب بن گیا۔ तो इश्काल यह होता है आपकी यह मुआरब की तारीफ जामे नहीं। मुआरब तो इसम भी होता है, फेले मुजारे भी होता है, लेकिन आपकी इस तारीफ से फेले मुजारे तारीफ से खारिज हो गया, क्योंकि आपने क्या तारीफ की मुआरब की, वो मुरक्कब जो मबनियुल असल के मुशाबे ना हो, और फेले मुजारे तो मबनियुल असल के मुशाबे है। फेले मुजारे भी असल में क्या था, जैसे मबनियुल असल असल के एतबार से मबनी है, फेले मुजारे भी असल के एतबार से क्या है, मबनी है, तो इसकी उनके साथ मुशाबहत आ गई भाई। तो आपकी तारीफ फेले मुजारे को शामिल नहीं, हालांकि वो भी मुआरब है। तो फेले मुजारे आपकी तारीफ से खारिज हो गया, हालांकि इसको भी दाखिल होना चाहिए था। फेले मुजारे का क्या इश्काल हुआ कि आपकी तारीफ जामिया नहीं है, फेले मुजारे भी मुआरब है और आपकी तारीफ उस पर सादिक नहीं आ रही, वो इसमें दाखिल नहीं हो रहा, और नीज आपकी ये तारीफ मान्या भी नहीं है, इसमें गैर दाखिल हो रहा है, गैर दाखिल हो रहा है। जैसे ज़रबा ज़ैदुन, ज़रबा फेले माजी है और इसको हमने किसके साथ जोड़ दिया, जैद के साथ, तो ये तरकीब में वाक़े है। ज़रबा ज़ैदुन किस में वाक़े है, तरकीब में वाक़े है। और नीस ये मबनियुल असल के मुशाबे भी नहीं है, तरकीब में भी वाक़े है और मबनियुल असल के मुशाबे भी नहीं है, क्योंकि यह तो खुद मबनियुल असल है। जब खुद मबनियुल असल है तो मबनियुल असल के मुशाबे हुआ नहीं। तो देखो दोनों शर्तें पूरी, तरकीब में भी वाक़े ज़रबा ज़ैदुन और मबनियुल असल के मुशाबे भी नहीं, तो यह तारीफ में दाखिल हो गया, इसको भी मुअरब कहना चाहिए, हालांकि यह तो मबनियुल असल है भाई। नीज फेले अमर भी इसमें दाखिल हो गया, इज़रिब ज़ैदन, इज़रिब फेले अमर किस में वाक़े है, तरकीब में, और नीज ये मबनियुल असल के मुशाबे भी नहीं, क्योंकि यह तो खुद क्या है, मबनियुल असल, तो यह भी क्या है, मुअरब की तारीफ में दाखिल हो गया। नीज मरारतु बिज़ैदिन, मरारतु बिज़ैदिन, ये बिज़ैदिन हरफे जर है, बा जारा हरफे जर, ये तरकीब में भी वाक़े है और नीज ये मबनियुल असल के मुशाबे भी नहीं, क्योंकि ये तो खुद क्या है, मबनियुल असल है, ये खुद क्या है। तो ज़रबा ज़ैदुन में ज़रबा तरकीब में भी वाक़े है और मबनियुल असल के मुशाबे भी नहीं, क्योंकि ये तो खुद मबनियुल असल है। इज़रिब ज़ैदन, इज़रिब तरकीब में भी वाक़े है और मबनियुल असल के मुशाबे नहीं, क्योंकि ये तो खुद क्या है, मबनियुल असल है। और मरारतु बिज़ैदिन के अंदर जो बा है ये तरकीब में भी वाक़े है और मबनियुल असल के मुशाबे भी नहीं, क्योंकि ये तो खुद क्या है, मबनियुल असल। तो ये तीनों भी मौरब की तारीफ में दाखिल हो गए, तो आपकी तारीफ मान्या नहीं दुखूल गैर से, गैर मौरब इसमें दाखिल हो रहे हैं। आपकी तारीफ जामे भी नहीं क्योंकि इससे फेले मुजारे खारिज हो रहा है, और आपकी तारीफ मान्या भी नहीं क्योंकि फेले माजी, फेले अमर और हुरूफ भी इसके अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो उसका जवाब दे रहे हैं शारह जामी, कहते हैं फल मुअरबुल लदी हुआ किस्म मिन अल इस्मी, कि भाई मुअरब वो वाला मुअरब जो इसम की किस्म है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तवज्जो है, हम किस मुअरब की बात कर रहे हैं, वो मुअरब जो इसम की किस्म है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो फेले मुजारे तो दाखिल नहीं हुआ, आपका इश्काल था कि फेले मुजारे क्यों नहीं दाखिल हो रहा, उसको भी दाखिल होना चाहिए भाई, हम बात ही इसम की कर रहे हैं, फेले मुजारे तो फेल है, वो तो इसके अंदर दाखिल होना भी नहीं चाहिए भाई, उसकी बात ही हम नहीं कर रहे। तो फेले मुजारे अगर नहीं दाखिल हुआ तो होना भी यही चाहिए कि इसको दाखिल नहीं होना चाहिए। और बाकी आपने क्या कहा था कि फेले माजी दाखिल हो रहा है, फेले अमर दाखिल हो रहा है और तमाम हरूफ दाखिल हो रहे हैं, तो उसका भी जवाब दे दिया कि भाई ये नहीं दाखिल हो सकते, हम उस मुअरब की बात कर रहे हैं जो इसम हो, और ये तो फेल हैं या हरूफ हैं, ये तो दाखिल ही नहीं हो सकते इसके अंदर। बात समझ में आ गई। तो लिहाजा फल मुअरब अल्लज़ी हुआ किस्म मिन अल इस्म, पस वो मुअरब जो इसम की किस्म है, वो मुअरब जो इसम की किस्म है भाई, पीछे अभी बताया इसम की किस्म है, तो इसम हुआ मकसिम और मुअरब और मबनी क्या हुई उसकी किस्म है। तवज्जो है, हमारे यहां राइज यह है, उमूमन कहते हैं मकसम भाई, मकसम कहते हैं। बात समझ में आ रही है भाई, सुनो, एक होता है मकसिम, एक है किस्म, एक है कसीम भाई, मकसिम किस्म और कसीम। जैसे कहते हैं अलकलिमतु इस्मू व फिअलू व हर्फुन, तो ये इसम फेल और हर्फ ये किस्में हैं, किसकी, कलिमा की, तो कलिमा को कहेंगे मकसिम भाई, क्या कहेंगे मकसिम, इसमें ज़र्फ का सीगा है तकसीम होने की जगह, ये कलिमा क्या है, इनके तकसीम होने की जगह है, यानी इसी की ये किस्में हैं, यही कलिमा तकसीम हुआ है तीन किस्मों के अंदर। तो जिसकी किस्में हो उसको मकसिम कहते हैं। तो कलीमा जो है इसम फेल और हर्फ की तरफ नजर करें तो कलीमा को क्या कहेंगे? मकसिम। और इसम फेल और हर्फ इनको कलीमा की तरफ देखें तो क्या कहेंगे? किस्म कहेंगे, कि ये कलीमा की किस्में हैं। और आपस में एक दूसरे की तरफ नजर करते हुए इनको कसीम कहते हैं। कसीम, कसीम यानी दूसरे के मुकाबिल हैं। इसम कसीम है किसकी? फेल और हर्फ की। और फेल कसीम है किसकी? इसम और हर्फ की। और हर्फ कसीम है किसकी? इसम और फेल की। तो ये सब आपस में एक दूसरे के मुकाबिल हैं, ये जमा नहीं हो सकते। तो मकसिम की तरफ नजर करते हुए ये इसम फेल और हर्फ किस्म कहलाते हैं, और आपस में एक दूसरे की तरफ नजर करते हुए एक दूसरे के मुकाबिल हैं तो एक ये कसीम कहलाते हैं। और जिसकी ये किस्में हैं उसको क्या कहते हैं? मकसिम कहते हैं। भाई बात समझ में आया? हमारे यहां जो राइज है अमूमन मकसम कहते हैं, मकसम कहते हैं, लेकिन सही लफ्ज मकसिम है भाई। कसामा यकसिमु बाबे जाराबा है भाई, और कसमा यकसिमु से इसमें जर्फ क्या आएगा? मकसिम आएगा भाई। तो ये मुआरब भी इसम की किस्म है तो ये भी इसम ही होगा। तो कहते हैं फल मुआरबुल्लदी हुआ किस्म मिन अल इस्मी अल मुरक्कब अल इस्मुल्लदी रुक्किबा मा गैरिही। अल मुरक्कब के बाद शारह जामी फरमा रहे हैं लिस्मुल्लज़ी रुकिबा मा गैरिही, यानी वो इसम जिसको जोड़ा गया हो गैर के साथ, तरकीबन ऐसी तरकीब में, यतहक्ककु माहू आमिलुहू जिसमें उसका आमिल भी पाया जाए, ऐसी तरकीब जिसमें उसका आमिल भी पाया जाए। ये दरअसल एतराज होता था। साहिब काफिया ने क्या फरमाया? फल मुआरबुल मुरक्कब, मुआरब जो है वो मुरक्कब होता है, तवज्जो है, वो मुरक्कब होता है जो मबनी असल के मुशाबे न हो। तो इश्काल होता है कि मुअरब किसकी किस्म है? इसम की। और इसम किसकी किस्म है? कलिमा की। और कलिमा की तारीफ में आया था अल कलिमतु लफ्जु वुज़िअ लिमानम मुफ़रदिन, वहां इफराद की कैद आई थी बाकायदा। मालूम हुआ इसम तो मुफरद होगा भाई, जब इसम मुफरद है तो मुअरब भी क्या होना चाहिए? मुफरद होना चाहिए। तो मुअरब तो मुफरद होता है, और आपने तो हमें क्या कहा? मुअरब मुरक्कब होता है। तो आपकी बात सही नहीं, मुअरब मुरक्कब नहीं होता, मुअरब मुफरद होता है। तो उसका जवाब दिया कि ये अल मुरक्कब इसका मौसूफ महजूफ है भाई। मौसूफ, मौसूफ क्या है? अल इस्म। फल मुअरबुल इस्मुल मुरक्कब, फल मुअरबु, देखा, मुअरब वो इसम है जो मुरक्कब हो, यानी जिसको तरकीब में जोड़ा गया हो। क्या जवाब दे दिया? कि इसका मौसूफ अल मुरक्कब का मौसूफ महजूफ है भाई। और मैंने आपको बतलाया था कि अलिफ लाम दो किस्म पर है, एक अलिफ लाम इस्मी और एक अलिफ लाम हर्फी। अलिफ लाम इस्मी किसे कहते हैं? जो इसमें फाइल और इसमें मफूल के सीगों पर दाखिल हो। और यह क्या है दरअसल? ये इसमें मौसूल है। तो अज़ारिबू किस माना में है? अल्लज़ी यज़रिबू। और अल-मज़रूब किस माना में है? अल्लज़ी युज़रबू। तो बतलाएंगे आपको कि यहां पर भी जो अल-मुरक्कब आया, ये मुरक्कब इसमें मफूल का सीगा है और इस पर अलिफ़लाम दाखिल है, और ये किस माना में है? अल्लज़ी रुक्किबा मा गैरिही। तो ये किस माना में है अल-मुरक्कब? अल्लज़ी रुक्किबा मा गैरिही, इसका मौसूफ महजूफ है अलिस्म। और ये किस माना में है? अल्लज़ी रुक्किबा मा गैरिही। इबारत क्या बन गई? फल मुअरबु लिस्मुल्लज़ी रुक्किबा मा गैरिही, बस मुअरब वो इसम है जो तरकीब में वाक़े हो, जिसको जोड़ा गया हो मा गैरिही अपने गैर के साथ। तवज्जो है, अब इश्काल खत्म हो गया। आपने क्या कहा था? मुअरब को तो मुरक्कब नहीं होना चाहिए, आपने तो क्या कह दिया? मुअरब मुरक्कब है। तो जवाब दे दिया कि भाई मुरक्कब यह खबर नहीं है अल मुरक्कब, बल्कि इसका मौसूफ महजूफ है अल इस्मुल मुरक्कब, वो इसम जो मुरक्कब हो यानी जिसको गैर के साथ जोड़ा गया हो। बात समझ में आ गई? और वो इसम जो गैर के साथ जोड़ा गया हो, जाहिर सी बात है वो तो मुफरद ही होगा भाई। तो हासिल कलाम यह कि यहां जो मुरक्कब का लफ्ज आया, ये उस मुरक्कब के माना में नहीं है जो मुफरद के मुकाबले में आता है। एक होता है मुफरद, एक होता है मुरक्कब। तो यहां जो मुरक्कब आया इससे वो वाला मुरक्कब नहीं मुराद जो किसके मुकाबले में है। नहीं तवज्जो सबक की तरफ भाई, इश्काल क्या हुआ था? आपने क्या कहा कि मुअरब को तो मुफरद होना चाहिए और आपने तो हमें क्या कह दिया, मुअरब क्या होता है? मुरक्कब होता है। कहते हैं भाई दरअसल आप गलत समझे हैं, आप समझे ये मुरक्कब से कौन सा मुरक्कब मुराद है जो किसके मुकाबले में आए, मुफरद के मुकाबले में। जब ये मुरक्कब है तो मालूम है मुफरद नहीं, मुरक्कब है तो मुफरद नहीं। तो कहते हैं यहां जो मुरक्कब आया ये वो मुरक्कब नहीं है जो मुफरद के मुकाबले में आता है, बल्कि यहां मुरक्कब बमाने अल्लज़ी रुक्किब मा गैरिही, वो इसम है जो गैर के साथ जोड़ा गया हो, वो मुरक्कब जो मुफरद के मुकाबले में आता है वो मुरक्कब बिनफ्सी ही होता है और ये मुरक्कब बिगैरी ही मुराद है। तो वज्जो है गुलाम ज़ैदिन, गुलाम ज़ैदिन। देखो ये सारा मजमूहा इसमें कितने लफ्ज हैं, दो लफ्ज हैं। मुफरद लफ्ज किसे कहते हैं, याद है या भूल गए? मुफरद लफ्ज किसे कहते हैं और मुफरद माना किसे कहते हैं? शाबाश, जुजे लफ्ज अगर जुजे माना पर दलालत करे तो वह लफ्ज भी मुरक्कब और वह माना भी मुरक्कब, और अगर जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत न करे तो वह लफ्ज भी मुफरद और माना भी मुफरद। तो यहां जो मुरक्कब का लफ्ज आया आप समझिए यह वो मुरक्कब है जो मुफरद के मुकाबले में आता है, लेकिन यहां वो मुरक्कब नहीं मुराद, बल्कि यहां मुराद है मा रुक की बाबी गैर ही, जिसको गैर के साथ जोड़ा गया हो। याद रखो ये जो मुरक्कब है ना ये दो किस्म पर है, एक मुरक्कब बी नफसी ही, एक है मुरक्कब बी गैरी ही। एक मुरक्कब बी नफसी ही, एक मुरक्कब बी गैरी ही। आप समझे शायद इस मुरक्कब से मुरक्कब बी नफसी ही मुराद है, हालांकि इससे मुरक्कब बी नफसी ही नहीं बल्कि मुरक्कब बी गैरी ही मुराद है। मुरक्कब बी गैरी ही किस तरह? देखो गुलाम ज़ैदिन ये दो लफ्ज हैं, इस सारे का मजमुआ दोनों का मजमुआ ये क्या कहलाएगा? मुरक्कब। ये मुरक्कब बिनफ्सी ही है, अपनी जात के एतबार से मुरक्कब है। इसमें दो कलिमे हैं, दो हों या दो से ज्यादा हों तो इसमें कितने कलिमे? दो। तो ये गुलाम ज़ैदिन ये सारा क्या है? मुरक्कब बिनफ्सी ही है। और एक होता है मुरक्कब भी गैरी ही, वो जो गैर के साथ जोड़ा गया हो। तो इस गुलाम ज़ैदिन के अंदर गुलाम ये मुरक्कब भी गैरी ही है, इस गुलाम को जोड़ा गया है किसके साथ? जैद के साथ। और जैद को जोड़ा गया है किसके साथ? गुलाम के साथ। तो इस सारे मजमुए में गुलाम के बारे में कहेंगे सिर्फ लफ्ज गुलाम को देखते हुए कि ये मुरक्कब भी गैरी ही है, इसको गैर के साथ जोड़ा गया है। इसी तरह जैद के लफ्ज के बारे में कहेंगे कि यह भी क्या है? मुरक्कब भी गैरी ही है, इसको गुलाम के साथ जोड़ा गया है। और दोनों का मजमुआ जो है इसको क्या कहेंगे? मुरक्कब भी नफसी ही। तो आप मुरक्कब से समझे शायद मुरक्कब भी नफसी ही मुराद है, हालांकि मुरक्कब भी नफसी ही यहां नहीं मुराद बल्कि मुरक्कब भी गैर ही होगा, मुफरद ही लेकिन गैर के साथ उसको जोड़ा गया है। भाई बात समझ में आ गई। देखिए किताब पर कहते हैं फल मुअरब अल्लज़ी हुआ किस्म मिन अल इस्मी, बस वो मुअरब जो कि इसम की किस्म है। अल मुरक्कब आई लिस्म अल्लज़ी, देखा अल मुरक्कब में मैंने आपको क्या बतलाया कि इसका मौसूफ महजूफ है अल इस्म, और ये अल मुरक्कब किस माना में है? अल्लज़ी रुक्किब मा गैरिही। अब देखो शारह है जामी यूं करेंगे, आगे अल्लज़ी रुक्किब मा गैरिही भी लाएंगे, ये किसका तर्जमा करेंगे? अल मुरक्कब का। और इससे पहले अल इस्म का लफ्ज भी निकाल देंगे, बतला देंगे कि इससे पहले मौसूफ भी महजूफ है। यहां पर इबारत समझ में आ रही है? अल मुरक्कब को भी खोल लेंगे और उससे पहले इसम का लफ्ज भी ले आएंगे। तो कहते हैं अल मुरक्कब अयल इस्म अल्लज़ी रुक्किब मा गैरिही, यानी वो इसम जिसको जोड़ा गया हो अपने गैर के साथ, अपने अलावा के साथ। और मैंने बतलाया था तरकीब भी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर उसका आमिल भी पाया जाए। भाई आमिल भी पाया जाए। भाई तो कहते हैं तरकीब यतहक्कु माहु आमिलुहु, ऐसी तरकीब, यह मफूल मुतलक वाक्य हो रहा है, पीछे रुक की बा फेल आया अल्लज़ी रुक की बा मा गैरिही, और तरकीबन यह क्या वाक्य हो रहा है? मस्तर है जो माकबल फेल के माना में है, इसको मफूल मुतलक कहते हैं। और तरकीबन नकेरा है, और नकेरा के बाद यतहक्कु फेल आ रहा है, और नकेरा के बाद फेल आए तो उसके लिए क्या बनता है? सिफत। और मौसूफ सिफत का तर्जमा कैसे करते हैं? मौसूफ से पहले ऐसा या ऐसी का लफ्ज ले आते हैं। तो कहते हैं अयल इस्म अल्लज़ी रुक्किबा मा गैरिही, यानी वो इस्म जिसको गैर के साथ जोड़ा गया हो, तरकीबन यतहक्कक़ु मअहू आमिलुहू, ऐसी तरकीब के जिसमें उसका आमिल भी पाया जाए, जिसमें उसका आमिल भी मौजूद हो, जिसमें उसका आमिल भी मौजूद हो, आमिल भी साथ मौजूद हो। मैंने बतलाया कि साहिब काफिया के नजदीक अकेला जैद का लफ्ज यह भी मबनी है, और गुलाम जैदीन के अंदर यह जो गुलाम का लफ्ज है यह भी मबनी, क्योंकि यह अगरचे यह तरकीब में भी वाक है और मबनीउल असल के मुशाबे भी है, लेकिन इस गुलाम पर कोई आमिल नहीं है जो इसको रफा नसब या जर दे, तो तरकीब भी कैसी होनी चाहिए जिसमें उसका आमिल भी हो। इसीलिए यह कैद लगा दी ताकि गुलाम जैदीन के अंदर जो गुलाम का लफ्ज है वह मुअरब होने से निकल जाए, वह साहिब काफिया के नजदीक मुअरब नहीं है। तो साहिब जामी बतलाते हैं तरकीब यतहक्कक़ु मअहु आमिलुहु, ऐसी तरकीब जिसमें उसके साथ उसका आमिल भी पाया जाए, जिसमें उसका आमिल भी पाया जाए। अब हर वो इस्म इसके अंदर आ गया जो तरकीब में हो और उसका आमिल भी पाया जाए और वो मबनीउल असल के मुशाबे भी ना हो। जैदुन कायमुन, जैदुन क्या है? इस्म है, मुब्तदा है, और कायमुन भी इसम है और खबर है, तवज्जो है, खबर है। और नीज, नीज ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो तरकीब में भी वाक़े हैं, और तरकीब भी ऐसी है कि जिनके अंदर इनका आमिल भी मौजूद है। जैदुन कायमुन, इन दोनों में क्या आमिल है? इब्तिदा आमिल है। क्या आमिल है? इब्तिदा किसे कहते हैं? शुरू करना, ये तो लफ्जी माना है। भाई तलबा परेशान होते हैं कि इब्तिदा क्या चीज है। भाई इब्तिदा इसको कहते हैं कि एक इसम मुस्नद इले या मुस्नद बन रहा हो और आमिल कोई ना हो तो ये है इब्तिदा। एक इसम क्या बन रहा हो? मुस्नद या मुस्नद इले बन रहा हो और आमिल लफ्जी कोई ना हो, आमिल ना कहें क्योंकि आमिल लफ्जी। एक इसम मुस्नद और या मुस्नद इलैह बन रहा है और आमिल लफ्जी कोई नहीं तो बस कहते हैं इसमें इब्तिदा आमिल है। किसे कहेंगे? दोहराओ जरा। कोई इसम मुस्नद इलैह या मुस्नद बन रहा हो और कोई आमिल लफ्जी ना हो तो क्या कहेंगे? इनमें आमिल क्या है? इब्तिदा है। यानी यूं कहो मुस्नद और मुस्नद इलैह का आमिल लफ्जी से खाली होना यह है इब्तिदा। मुस्नद या मुस्नद इलैह का आमिल लफ्जी से खाली होना यह है इब्तिदा। अब सिर्फ इसमें मुब्तदा और खबर दाखिल हो गए, बाकी कोई भी नहीं। इसमें सिर्फ दो चीजें आई, मुब्तदा और खबर। ये दोनों, मुब्तदा होता है मुस्नद इलैह और खबर क्या होती है? मुस्नद। तो एक इसम मुस्नद इलैह बन रहा है, एक क्या बन रहा है? मुस्नद। और आमिल लफ्जी से दोनों खाली हैं, कोई आमिल लफ्जी यहां मौजूद नहीं जो उनको रफा दे रहा हो तो क्या कहेंगे? जब आमिल लफ्जी नहीं है तो आमिल कौन है? इब्तिदा है। क्या है? इब्तिदा। यह मरफू है इब्तिदा की वजह से। जैदुन कायमुन, जैदुन को रफा किसने दिया? इब्तिदा ने। कायमुन को रफा किसने दिया? इब्तिदा। इब्तिदा किस चीज का नाम है? आमिल लफ्जी से खाली होना किसका? मुस्नद और मुस्नद इलैह का। हर लफ्ज का नहीं, मुस्नद और मुस्नद इलैह का आमिल लफ्जी से खाली होना यह है इब्तिदा। भाई इब्तिदा। तो लिहाजा इन्होंने क्या कहा? मौरब वो है जो तरकीब में वाक हो और तरकीब भी ऐसी हो जिसके में उसका आमिल भी पाया जाए। भाई आमिल भी पाया जाए। अब जैदुन कायमुन, दो इसम हैं, एक मुस्नद इलैह बन रहा है, एक मुस्नद बन रहा है, और दोनों में इब्तिदा भी आमिल है, तो ये दोनों तरकीब में भी वाक़े हैं और तरकीब भी ऐसी है कि इनके अंदर इनका आमिल भी है। आमिल क्या? इब्तिदा। बात समझ में आ? इब्तिदा यहां इनको रफा दे रही है। यानी यूं का आमिल लफ्जी नहीं होता तो फिर वहां आमिल किसको बनाते हैं? इब्तिदा को आमिल करार देते हैं, और यह सिर्फ मुब्तदा और खबर में है और जगह नहीं। तो यह दोनों आमिल लफ्जी से खाली है। तो जैदुन कायमुन ये मुसनद इलैह और मुसनद हैं और आमिल लफ्जी से खाली, तो इनके अंदर इब्तिदा आमिल है। तो जैदुन कायमुन इसमें तरकीब भी है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और ऐसी तरकीब है जिनमें आमिल भी पाया जा रहा है, मानवी है। अब वो आमिल मानवी है, लफ्जों में नहीं है। लफ्जों में तो सिर्फ जैद और कायम है, मामूल मौजूद है लफ्जों में, लफ्जों के अंदर आमिल मौजूद नहीं है। आमिल मानवी, एक मानवी चीज है भाई। बात समझ में आ गई, ये इब्तिदा है। तो ये ऐसी तरकीब है जिसमें इनका आमिल भी है, और नीज ये मबनीउल असल के मुशाबे भी नहीं, न जैद की मुशाबिहत है मबनीउल असल से न कायमुन की। तो अब जैद और कायमुन दोनों मौरब की तारीख में दाखिल हो गए। गुलाम जैदीन में जो गुलाम था वो तो दाखिल नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वह आमिल नहीं था। लेकिन जैद उन कायम उन दोनों दाखिल हो गए क्योंकि दोनों में आमिल है भाई। और नीस कामा हा उलाई, कामा हा उलाई, कामा फेल हा उलाई, ये इसमें इशारा है करीब के लिए, जमा के लिए। ये सब खड़े हो गए, कामा हा उलाई, ये सब खड़े हो गए। अब ये जो हा उलाई है ये भी तरकीब में वाक है कामा के साथ। कामा तो फेल है ना, हम फेल की बात तो नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ इसम की बात कर रहे हैं, मौरब की बात कर रहे हैं, वो मौरब जो इसम होता है। तो कामा की तो बात नहीं, कामा हाउलाई के अंदर कामा मुस्नद है और हाउलाई उसका फाइल है, फाइल। तो ये तरकीब में वाक है हाउलाई, और तरकीब भी कैसी है, तरकीब भी ऐसी है जिसमें उसका आमिल यानी कामा भी मौजूद है, यह भी इसके अंदर दाखिल हो गया। आप कहेंगे ये तो मबनीउल असल के मुशाबे है, ये मौरब में कैसे दाखिल? नहीं भाई, अभी अल्लज़ी लम युशबिह मबनीयल असली, ये कह तो अभी आगे आने वाली है। अभी तो जब मुरक्कब कहा, क्या कहा? मुरक्कब कहा, तो ये कामा हा उलाई वाला हा उलाई भी तारीफ में दाखिल हो गया। आगे जब कहेंगे अल्लज़ी लम युशबिह मबनीयल असली, फिर ये निकल जाएगा। ये तो मबनीउल असल के मुशाबे है, इसमें इशारा है भाई, बात समझ में आ गई। तो अभी जब अल मुरक्कब कहा तो इसके अंदर हर वो इसम आ गया जो तरकीब में भी हो और साथ आमिल भी हो, और बाकियों के अंदर तो आमिल लफ्जों में होता है, वो तो बात जाहिर थी। मुब्तदा और खबर में तो आमिल लफ्जों में नहीं होता, बताया वो भी इसके अंदर दाखिल हो गया, क्योंकि मुब्तदा और खबर दोनों किस में वाके हैं, तरकीब में है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और तरकीब भी कैसी है कि इस तरकीब में इनका आमिल मानवी भी मौजूद है भाई, ये भी दाखिल हो गए मौरब की तारीफ में। और हा उलाई भी मौरब की तारीफ में दाखिल हो गया क्योंकि कामा हा उलाई के अंदर हा उलाई वो तरकीब में वाके है और ऐसी तरकीब है जिसमें उसका आमिल भी है। इसको मौरब की तारीफ से आगे चलकर हम निकाल देंगे, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं फयद खुलूफी ही जैदों व कायमुन व हा उलाई, तो इस मुरक्कब के अंदर दाखिल हो गया जैद भी और कायम भी और हा उलाई भी। फी कौली का, जो कि आपके इस कौल में है जैदन कायमुन, देखो इस कौल में जैदन और कायमिन ये दोनों मुब्तदा खबर हैं, ये भी दाखिल हो गए इस मुरक्कब में। व काम हा उलाई, और जैसे काम हा उलाई के अंदर हा उलाई है, ये भी इसके अंदर दाखिल हो गया। बिखिलाफ हिमालय सभी मुरक्कब इन असन, बखिलाफ उस इसम के जो मुरक्कब ही ना हो, असलन कतअन, जो कतई तौर पर यानी सिरे से मुरक्कब ही ना हो। मीना लस्मा इल मादूदती, यानी वो असमा जिनको शुमार किया जाता है। भाई बाद औकात आप चीजों को शुमार करते हैं, क्या करते हैं? जैसे उस्ताद आपको कहता है भाई हुरूफ तहज्जी सुनाओ, तो आप कैसे सुनाते हैं? अलिफ बा ता सा जीम हा खा। तो देखो ये आप हुरूफ तहज्जी सुना रहे हैं, आप उनको शुमार कर रहे हैं। इसी तरह कभी आप और चीजें गिनते हैं, आप चीजों को गिन रहे होते हैं, या जैसे अपने साथियों को शुमार कर रहे हैं, गिन रहे हैं, जैद अमर बकर खालिद उस्मान वगैरह, ये लफ्ज आप जिक्र करते जा रहे हैं। आप यहां देखो तरकीब ही नहीं है सिरे से, ये तो आप सिर्फ शुमार कर रहे हैं, तरकीब है जी? यहां कोई तरकीब नहीं है, आप लफ्जों को ये अलग अलग शुमार करते जा रहे हैं। हुरूफ तहज्जी क्या है? अलिफ फिर बा फिर ता फिर सा, तो ये सिर्फ शुमार कर रहे हैं, यहां तरकीब नहीं। ये अपने साथियों को शुमार करते हैं, जैद अमर बकर खालिद, तो ये सिर्फ शुमार कर रहे हैं। तो ये जो असमाए मादूदा हैं, असमाए मादूदा याद रखो ये साहिब काफिया के नजदीक ये मबनी हैं, क्योंकि ये तरकीब में वाके नहीं। तरकीब भी होनी चाहिए और तरकीब भी ऐसी हो जिसमें आमिल भी साथ हो और नीज वो मबनीउल असल के मुशाबे न हो। तो ये असमाए मादूदा तारीफ में दाखिल हुए या निकल गए? अल मुरक्कब कहते ही ये निकल गए क्योंकि ये तो तरकीब में वाके नहीं है। तो कहते हैं बिखिलाफी मालई सभी मुरक्कबिन असलन, बखिलाफ वो इसम जो सिरे से मुरक्कब ही ना हो। मीनल असमाइल मादूदती, असमाए मादूदा में से यानी वो असमा जिनको शुमार किया जाए, नहवु अलिफ बा ता जी आगे जैद अमर बकर, ये अलग अलग शुमार कर रहे हैं। बेखिलाफी मा हुआ मुरक्कब मा गैर ही, बखिलाफ उसके जो गैर के साथ मुरक्कब है, जो गैर के साथ मुरक्कब है, लेकिन ला तरकीब यतहक्कु माहू आमिलुहु, लेकिन वो ऐसी तरकीब में नहीं है जिसमें उसका आमिल भी साथ पाया जा रहा हो। का गुलामीन, जैसे कि गुलाम का लफ्ज है, फी गुलामी जैदीन, गुलामी गुलामी जैदीन, ये इसको जरा अलग कर लो। यहां तो फी की इस वजह से जर हमने पढ़ लिया, बल्कि इसको भी इसी तरह पढ़ लो, फी गुलाम जैदीन, फी गुलाम जैदीन, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था अलिफ बा ता जैद अमर बकर, जैदुन नहीं पढ़ना, अमरोन नहीं पढ़ना, बकरोन नहीं पढ़ना, क्योंकि ये सिर्फ अस्माए मादूदा हैं, शुमार किए जा रहे हैं, तरकीब में नहीं है, और रफा के लिए आमिल चाहिए होता है। तो यहां भी कैसे पढ़ो, का गुलाम फी गुलाम जैदीन, जैसे गुलाम जैदीन के अंदर गुलाम का लफ्ज है भाई, ये अगरचे तरकीब में है लेकिन तरकीब में इसका आमिल साथ नहीं। तो साहिब काफिया के नजदीक ये भी किस में से है, ये मबनियात में से है भाई, किस में से है,
मबनियात में
से। फिर सुनो हासिल कलाम, साहिब काफिया की तारीफ चल रही है मौरब की, साहिब काफिया ने क्या फरमाया, मौरब वो इसम है जो गैर के साथ तरकीब में वाके हो। तवज्जो है, जब ये कहा तो जैदुन कायमुन, मुब्तदा और खबर दोनों भी इसके अंदर दाखिल हो गए, कामहा उलाई ये भी इसके अंदर दाखिल हो गया, क्योंकि ये सब तरकीब में भी हैं और साथ इनका आमिल भी है। अस्माए मादूदा निकल गए क्योंकि वो तो सिरे से तरकीब में ही नहीं। इसी तरह गुलाम जैदीन में जो गुलाम है ये भी क्या हुआ, निकल गया, क्योंकि तरकीब में तो है लेकिन साथ इसका आमिल नहीं। ये सारे साहिब काफिया के नजदीक मबनी है। कहते हैं फइन न जमी अजालिका मिन कबील इल मबनियात इंद अल मुसन्निफी, क्योंकि ये सारे जो हैं ये मबनियात की कबील से हैं मुसन्निफ रहिमहुल्लाह के नजदीक। कौन सारे, जो सिरे से तरकीब में ही वाके ना हो, यानी अस्माए मादूदा, और या जो तरकीब में तो वाके है लेकिन ऐसी तरकीब नहीं है जिसमें उसका आमिल हो। ये सारे किस में दाखिल हो गए, मबनियात में दाखिल हो गए, ये मबनियात की कबील से हैं मुसन्निफ के नजदीक भाई। अल्लदी लम युशबिह ऐ लम युनासिब मुनासबतम मुअस्सिरतम फी मनइल इराबी मबनियल असली, ये दूसरी कैद आ गई। अल्लदी लम युशबिह, लम युशबिह के बाद साहिब जामी उसका माना कर रहे हैं ऐ लम युनासिब, यहां मुशाबहत से मुनासिबत मुराद है। मुशाबहत तो इसे कहते हैं ना कि एक चीज दूसरी चीज जैसी हो सिफत के अंदर। आप कहते हैं जैदुन कल असदी, जैद शेर जैसा है, फिर शुजाअती बहादुरी में। तो मुशाबहत किसे कहते हैं कि एक चीज दूसरी चीज जैसी हो, किस चीज के अंदर, सिफत के अंदर, एक चीज दूसरी चीज जैसी हो सिफत के अंदर भाई। तो यहां साहिब जामी बतला रहे हैं कि यहां मुशाबहत से मुशाबहत नहीं मुराद बल्कि मुनासिबत मुराद है, क्योंकि अगर मुशाबहत कहा जाए मुशाबहत, फिर तो हर मुअरब वो मबनीउल असल के मुशाबे है, हर फिर तो मुअरब कोई बचेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि मुअरब भी लफ्ज होता है और मबनीउल असल भी क्या है, लफ्ज है, या मुअरब भी एक कलीमा है वह लफ्ज जिसका कुछ माना हो, और मबनीउल असल भी क्या है, एक कलीमा है जिसका कुछ ना कुछ माना है। तो मुशाबहत है या नहीं, तो मुशाबहत तो है, तो बतलाएंगे आपको कि नहीं भाई यहां मुशाबहत नहीं मुराद, वसफ के अंदर, वसफ के अंदर इश्तराक मुराद नहीं है बल्कि मुनासिबत मुराद है, और कुछ खास मुनासिबतें हैं वो मुराद हैं, हर मुनासिबत भी मुराद नहीं है। तो यहां मुशाबहत जो है मुनासिबत के माने में है। अल्लदी लम युशबिह ऐ लम युनासिब, यानी मुनासिब ना हो, मुनासिबतम मुअस्सिरतम फी मनइल इराबी, बतला रहे हैं मुनासिबत से हर मुनासिबत मुराद नहीं है, मुनासिबत आम है वो हर तरह की मुनासिबत हो सकती है। तो याद रखो यहां उलमा जिक्र फरमाते हैं कि चीजें जो हैं उनमें इश्तराक चार तरह इश्तराक हो सकता है, कभी दोनों दो चीजों की जिंस एक होती है, कभी दो की नौ एक होती है, कभी दोनों की सिफत एक होती है, और कभी दोनों की सूरत एक जैसी होती है। दो चीजों में इश्तराक चार तरह हो सकता है, या दोनों की जिंस एक होगी, या दोनों की नौ एक होगी, या दोनों की सिफत एक होगी, या दोनों की सूरत एक जैसी होगी। जिंस एक जैसी हो, जैसे आप कहें इंसान और गाय बैल बकरी, सबकी जिंस हैवान है, तो हम कहेंगे ये इंसान और गाय बैल बकरी ये सब हैवान होने में शरीक हैं। और कभी कभार जो इश्तराक होता है वह नौ में होता है, जैसे जैद अमर और बकर ये सब क्या हैं, इंसान हैं, सबकी नौ एक ही है भाई, मैं इंसान होने में सारे शरीक हैं। और कभी जो इश्तराक होता है वो सिफत में होता है, जैसे मैं कहता हूं जैद शेर जैसा है बहादुरी में, मालूम हुआ बहादुरी की सिफत में दोनों शरीक हैं। और कभी कभार सूरत में इश्तराक होता है, जैसे आप कहते हैं कि ये मेरी किताब आपकी किताब जैसी है, देखो दोनों की सूरत क्या है एक जैसी, या आप जैसे कहें शेर की तस्वीर शेर जैसी है, देखो दोनों में इश्तराक है, किस चीज के अंदर, शक्लो सूरत में। या आप कहते हैं ये दोनों भाई एक दूसरे जैसे हैं, यानी किस में, शक्लो सूरत में, मसन जुड़वा हैं। तो इश्तराक कितनी किस्म का हो सकता है, चार किस्म का, या इश्तराक जिंस में होगा या नौ में होगा या सिफत में होगा या सूरत में होगा। तो अगर जिंस में इश्तराक हो उसको कहते हैं मुजानसत, तवज्जो है, मुजानसत। और अगर नौ में इश्तराक हो तो इसको कहते हैं मुमासलत, और अगर सिफत में इश्तराक हो तो उसको कहते हैं मुशाबहत, और अगर सूरत में इश्तराक हो इसको कहते हैं मुशाकलत, मुशाकला, मुजानसा, मुमासला, मुशाबहा और मुशाकला। मुजानसा का क्या माना, जिन्स एक, मुमासला का क्या माना, नौ एक, और मुशाबहत का क्या माना, सिफत एक है, और मुशाकलत का क्या माना, शकल एक, सूरत एक है भाई। तो ये चार किस्मों का इश्तराक है, और मुनासिबत आम है, वो सबको शामिल है। मुनासिबत का लफ्ज आप मुजानसत के लिए भी बोल सकते हैं, मुमासलत के लिए भी बोल सकते हैं, ये लफ्ज आप मुशाबहत के लिए भी बोल सकते हैं, और ये लफ्ज आप मुशाकलत के लिए भी बोल सकते हैं। तो मुनासिबत आम, तो ये चार किस्म के इश्तराक हैं, और मुनासिबत आम है, ये सबको शामिल है। बात समझ में आ गई, तो बतला दिया कि यहां जो मतन में लम युश भी आया, इससे मुशाबहत नहीं मुराद, बल्कि ये किस माना में है, मुनासिबत है, और मुनासिबत होना आम है। और बतलाएंगे कि हर मुनासिबत भी नहीं मुराद, खास मुनासिबतें मुराद हैं, जिसकी वजह से वो कलिमा मबनी बन जाए। इसमें इशारा को मबनी करार दिया, किस वजह से, क्योंकि इसकी मुशाबहत है, यानी मुनासिबत है, किसके साथ, हर्फ के साथ, किस चीज में, मोहताज होने में, जैसे हर्फ अपना माना बताने में गैर का मोहताज, इसी तरह इसमें इशारा मुशारुन इलैह का मोहताज, और इसमें मौसूल सिला का मोहताज है। इसी तरह जैसे रुवैदा बमाने अमहिल के, ये रुवैदा इसमें फेल मबनी है, क्योंकि ये किस माना में है, अमहिल के माना में है। तो जब कोई इसम मबनीउल असल के माना में हो तो फिर दोनों में मुनासिबत आ गई। तो इस सूरत में ये क्या है, रुवैदा मबनी है, अस्माए अफाल किस में से है, मबनियात में से। तो ये क्यों मबनी होते हैं, कि ये मबनीउल असल के माना में होते हैं, बाज माजी के माना में है, बाज अमर के माना में है, तो ये मबनीउल असल के माना में है, तो ये भी एक किस्म की मुनासिबत है भाई। तो मुनासिबत आम है भाई, बाकी तफसील आ जाएगी मबनियात की बहस में। बस इतना याद रखें कि यहां मुशाबहत से मुराद मुनासिबत है, यही कहें यहां मुशाबहत मुनासिबत के माना में है, और हर मुनासिबत नहीं मुराद, वो कुछ खास मुनासिबतें मुराद हैं, जिसकी वजह से कोई इसम मबनी बन जाता है, और वो छह हैं भाई, वो आगे जिक्र करेंगे, छह मुनासिबतें हैं। बात समझ में आ गई। कहते हैं अलम युनासिब मुनासबतन मुअस्सिरतन फी मनइल इराबी, यानी ऐसी मुनासिबत जो मुअस्सिर भी हो मनइल इराब में, इराब के लिए रुकावट बनने में मुअस्सिर भी हो, हर मुनासिबत नहीं मुराद भाई। वरना तो मैंने बताया मुनासिबत तो वैसे भी मौजूद है, हर मुअरब भी लफ्ज है और मबनीउल असल भी लफ्ज है, तो मुशाबहत तो है, ये भी लफ्ज वो भी लफ्ज, या हर मुअरब कलिमा है और मबनीउल असल भी क्या होता है कलिमा, तो कलिमा होने में मुशाबहत है, तो हर मुशाबहत नहीं मुराद, बल्कि खास मुशाबहतें यानी खास मुनासिबतें मुराद हैं, जो रुकावट बनती हैं इराब के लिए, जिसकी वजह से फिर इराब नहीं आ सकता। तो कहते हैं अल्लज़ी लम युशबिह ऐ लम युनासिब मुनासबतन मुअस्सिरतन फी मनअल इराबी, यानी वो इसम जिसकी ऐसी मुनासिबत ना हो जो मुअस्सिर हो मनअ इराब के अंदर, ऐसी मुनासिबत ना हो मबनीयल असली किसके साथ, मबनीयल असल के साथ, अयल मबनीयल लदी हुअल असल फिल बिनाई। बतलाना ये चाहते हैं कि मबनीयल असली ये इन दोनों में इजाफत बयानिया है भाई, यानी इजाफत बयानी है, इजाफत भाई याद रखो एक होता है मुजाफ एक होता है मुजाफुन इले, दोनों अलग अलग होते हैं। गुलाम उजैदिन गुलाम अलग जात है और जैद अलग जात है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मुजाफुन इले आकर मुजाफ का बयान करता है कि मुजाफ से क्या मुराद है। तवज्जो है, मुजाफ आया, अब इस मुजाफ से क्या मुराद है, तो आगे मुजाफुन इले आकर उसका बयान कर देता है, तो इसको इजाफत बयानी कहते हैं। और इसमें मुजाफ और मुजाफिन इलैह एक दूसरे से गैर नहीं होते, ये एक ही चीज होते हैं ये दोनों, क्योंकि मुजाफिन इलैह क्या कर रहा है, मुजाफ का बयान कर रहा है कि मुजाफ से क्या मुराद है भाई। जैसे जैसे शर तहजीब में आपने पढ़ा लफ्ज आल की असल के बारे में बतलाते हुए शारह फरमाते हैं कि आल जो है असलहू अहलुन, आल की असल क्या है, अहल है, बिदलीली उहैलिन उहैल की दलील की वजह से, उहैल की बिदलीली उहैलिन दलील मुजाफ उहैलिन मुजाफोन इले, तो ये दोनों मुजाफ मुजाफिले हैं, लेकिन यहां इजाफत बयानी है, यानी मुजाफिले बयान कर रहा है मुजाफ का बिदलीलिन एक दलील की वजह से, और वो दलील क्या है, उहैल है। आपने पढ़ा है अत्तस्गीरु व तकसीरु यरुद्दानिल अशिया इला उसूलिहा, आप किसी लफ्ज की असल मालूम करना चाहते हैं कि इसकी असल क्या थी, इसका मादा क्या था, तो आप उसकी तस्गीर निकाल कर देख लें कलाम अरब में, तो उससे उसकी असल का पता चल जाएगा। जैसे अर्ज़ुन ये अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होता है, भाई ये क्यों मुअन्नस है, हमने इसकी असल इसकी तस्गीर निकाली, तो इसकी तस्गीर इस्तेमाल है उरैज़तुन और उसमें गोलता जुड़ी हुई है, मालूम हुआ ये अरबी में मुअन्नस इसलिए है कि ये असल में इसके साथ गोलता थी भाई। और इसी तरह किसी इसम की असल निकालनी हो तो उसकी जमे तकसीर बना लो, जमे तकसीर जिस जमा में आकर मुफरत का वजन टूट जाता है, जैसे रजुल की जमा रिजाल, देखो इसमें रजुल का सारा वजन टूट गया, रजुल में रा पर जबर था, रिजाल में रा के नीचे जेर है, रजुल में जीम पर पेश थी, रिजाल में जीम पर जबर है, रजुल में जीम के बाद लाम है और रिजाल में जीम के बाद अलिफ है, तो मुफरत का सारा वजन टूट गया, इसको क्या कहते हैं, जमे तकसीर। और जमे तकसीर से किसी चीज की असल का पता चलता है, जैसे दीनार, हम दीनार की असल पता चलाना चाहते हैं कि दीनार की असल क्या है, तो देखा इसकी जमे तकसीर दनानीर आती है, क्या आती है, दनानीर, और दनानीर के अंदर तो दो नून हैं और दीनार में तो एक नून है, मालूम हुआ यहां असल में दो नून थे, दीनार असल में था दिनार, क्या था, दिनार, दो नून थे भाई, फिर पहले नून को या से बदल दिया दीनार तख़फीफ के लिए, दीनार को पढ़ना आसान या दीनार को पढ़ना आसान, दीनार, तो लिहाजा इसलिए उस पहले नून को किसे बदल दिया, या से बदल दिया, तो ये जो या थी ये असल में नून थी भाई, दो नून थे, किससे पता चला, जमे तकसीर से। तो किसी भी लफ्ज की असल का पता चलाना हो तो अरबी में उसकी तस्गीर को देख लें या उसकी जमे तकसीर को देख लें, उससे आपको उस लफ्ज की असल का पता चल जाएगा। तो यहां भी बतला रहे हैं कि आल की असल अहल है और दलील क्या है, बी दलील उहैलिन उहैल दलील की वजह से भाई, ये आल की तस्गीर जो अरबी में इस्तेमाल होती है वो उहैल है, इस उहैल तस्गीर से पता चल गया कि इसके दरमियान तो हा है भाई, मालूम हुआ आल भी असल में क्या था, अहल था, उसके भी दरमियान में हा थी भाई, तो क्या दलील है, उहैल, तो बी दलील उहैलिन दलील है मुजाफ उहैलिन है मुजाफोन इले, और ये इजाफत बयानी है, वो दलील क्या है, उहैल है, देखा वही दलील उहैल है कि उहैल कोई अलग चीज है, वही दलील ही का बयान हो रहा है कि वो दलील ओहैल है भाई, यहां पर भी इजाफत बयानिया है भाई, मबनी है मुजाफ, अल असल है मुजाफोन इले, लेकिन ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। मबनी अल असली यानी वो मबनी, अल असल जो असल है, वो मबनी जो असल है यानी मबनी होने में, वो मबनी जो असल है मबनी होने में, वो भी मबनी है या नहीं, वो भी तो वो दोनों एक ही चीज है भाई। अयल मबनी यल्लदी हुवल असलु फिल बिनाई यानी वो मबनी जो कि असल है बिना के अंदर, फल इजाफतु बयानियतुन तो ये इजाफत बयानिया है। और मबनीुल असल क्या क्या है, कहते हैं वहुवल माजी वल अमरु बिगैरिल लामी वल हर्फु, माजी है वो अमर जो बगैर लाम के हो यानी अमर हाजिर है इजरिब वगैरह, वल हर्फु और हर्फ ये तीन हैं। व बिहादल कैदी और इस कैद के जरिए, कौन सी कैद, ये जो मतन में आया अल्लदी लम युशबिह मबनी अल असली, मुअरब वो है जो मुरक्कब हो और मबनी अल असल के मुशाबे ना हो, इस कैद से वो जो हाउलाई दाखिल हुआ था वो निकल गया, क्योंकि वो तरकीब में भी है, काम हाउलाई ये तरकीब में भी है हाउलाई, और इस तरकीब में इसका आमिल भी साथ है, लेकिन दूसरी शर्त पूरी नहीं। हमने क्या कहा था, वो मबनी उल असल के मुशाबे न हो, और ये तो मबनी उल असल के मुशाबे है, तो ये निकल गया उसमें से। तो कहते हैं वबिहाद अल कैदी और इस कैद के जरिए खाराजा निकल गया मिसलु हाउलाई, हाउलाई जैसे लफ्ज फी मिसल कामा हाउलाई, कामा हाउलाई के जैसी मिसालों में जो हाउलाई का लफ्ज है ये इस कैद के जरिए निकल गया। तर्जमा दोबारा देखें, कहते हैं वबी हाद अल कैदी खराजा मिसलुहा उलाई फी मिसल कामहा उलाई, कहते हैं इस कैद के जरिए कामहा उलाई जैसी मिसालों में जो हा उलाई का लफ्ज है ये इस जैसे लफ्ज निकल गए, लिकौनी ही मुशाबिहन ली मबनी यिल असली, इस वजह से कि मबनी उल असल के मुशाबे है। कमा सयजी उफी बाबी ही इंशा अल्लाह ताला, जैसे कि अन करीब आ जाएगा फी बाबी ही इस मबनी के बाब के अंदर, इंशा अल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा भाई। बात समझ में आ गई, हल हो गया सारा यहां तक, चलिए बस भाई। हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।